ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली के सातों लोकसभा सांसदों ने आज संसद भवन में अपनी सदस्यता की शपथ ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई भागों में जल संकट अभी भी बरकरार। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को स्थगित करते हुए मामले की सुनवाई को बुधवार तक टाल दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के एक सप्ताह एक थीम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली के सातों लोकसभा सांसदों ने आज संसद भवन में अपनी सदस्यता की शपथ ली। लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बृहत्हरि महताब ने इन सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई। इन सांसदों में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बांसुरी स्वराज, पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से प्रवीण खंडेलवाल, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेन्द्र चंदोलिया शामिल हैं। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई भागों में जल संकट अभी भी बरकरार है। इस बीच आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर हरियाणा से 10 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन की मांग पर हस्तक्षेप करने की अपील की। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के उस दावे को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि हरियाणा दिल्ली को पर्याप्त पानी नहीं दे रहा है। श्री राय ने उपराज्यपाल से मंत्रियों के साथ वजीराबाद जल उपचार संयंत्र का दौरा करने की अपील की। जल मंत्री आतिशी की भूख हड़ताल के समर्थन में आम आदमी पार्टी धरना स्थल पर दिन में कैंडल मार्च निकालेगी।
मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती।
उधर भाजपा ने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में पानी सीधे तौर पर यमुना नदी से नहीं बल्कि नहर से आता है जो नियमित रूप से आ रहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकारों को बताया कि वजीराबाद जल उपचार संयंत्र में 95% मिट्टी है जो पानी के प्रवाह में बाधा डाल रही है।
मैं फिर कह रहा हूं कि एक राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना, इनको चाहिए था जहां जहां लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए आज भी वो ऐसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अपनी चोरी कालाबाजारी को ढकने का एक असफल प्रयास है और इस नौटंकी से कुछ हासिल होगा मुझे नहीं लगता।
श्री सचदेवा ने यह भी सवाल किया कि दिल्ली सरकार ने मौजूदा पानी की कमी के दौरान जरूरत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पानी के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा संचालित पंजाब सरकार से संपर्क क्यों नहीं किया। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच आज दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हरियाणा से दिल्ली को पानी दिलाने का आग्रह किया। इसके अलावा मंत्रियों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भी अपील की है कि वे उनके साथ वजीराबाद बैराज का दौरा करें ताकि स्पष्ट हो सके कि हरियाणा सरकार दिल्ली को कितना पानी दे रही है। आज एक प्रेस वार्ता में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर हरियाणा की वजह से दिल्ली में उत्पन्न हुए जल संकट मामले में दखल करने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं ने कल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भी मुलाकात की थी। इस दौरान श्री सक्सेना ने बताया कि हरियाणा सरकार दिल्ली को पूरा पानी दे रही है लेकिन हरियाणा सरकार से दिल्ली को 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम मिल रहा है जिस वजह से वजीराबाद में यमुना नदी सूख चुकी है। श्री राय ने कहा कि शहर के लोगों को पूरा पानी दिलाने के लिए जल मंत्री आतिशी 4 दिन से अनशन पर हैं। उन्होंने बताया कि मंत्री आतिशी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट को देखते हुए आज अनशन स्थल पर ही दिल्ली के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। इस दौरान सभी परिस्थितियों पर चर्चा की गई। मंत्री गोपाल राय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल और हरियाणा सरकार से आग्रह है कि वे दिल्ली के कोटे का पानी दिलाएं। राजधानी में जल संकट, सफाई व्यवस्था और जल भराव की समस्याओं से लोगों को हो रही दिक्कतों को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली सरकार को विफल बताया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत से जूझ रही है। वहीं लोगों को मॉनसून के आने से पहले ही उनके क्षेत्रों में जल भराव होने का डर है। श्री यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने एजेंसियों के माध्यम से शहर के नालों से 82% गाद निकालने का दावा कर रही है, लेकिन यह झूठ है। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के एक सप्ताह एक थीम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस संबंध में सीएसआईआर की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि उद्योग, उसके हितधारकों और इससे जुड़े लोगों के लिए यह पहल मददगार साबित होगी। श्री सिंह ने कहा कि यह पहल विभिन्न विभागों को एक साथ लाएगी और नवाचार को बढ़ावा देगी। सीएसआईआर वन वीक वन थीम कार्यक्रम में एरोस्पेस, स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा जैसे 8 अलग अलग विषय शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को स्थगित करते हुए मामले की सुनवाई को बुधवार तक टाल दिया है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ शराब नीति मामले से जुड़े फैसले पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पुलिस ने जाली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट उपलब्ध करवाने वाले एक एजेंट को हवाई अड्डे परिसर में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उसने बैंकॉक जाने वाले एक यात्री के लिए फर्जी आधार कार्ड पर पासपोर्ट बनवाया था। पकड़ा गया एजेंट उत्तर प्रदेश का निवासी है। केंद्र ने खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए गेहूं और भंडारण की सीमा निर्धारित की है। नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए ये सीमा 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गेहूं और दाल के मूल्यों के सामान्य बने रहने तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से भंडार की जांच करेगी। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा है कि अरहर की दाल और काबुली चना तथा चना पर भंडार सीमा निर्धारित करने के बाद इनके मूल्यों में कमी आई है। उत्तर रेलवे ने बताया है कि दिल्ली डिवीजन पर यातायात बाधित होने के कारण कल कुल रेलगाड़ियों की सेवाओं में परिवर्तन किया गया है। नई दिल्ली से रोहतक के बीच चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 14323 कल बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही समाप्त होगी। इसके अलावा रेलगाड़ी संख्या 14324 रोहतक, नई दिल्ली, बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। ये रेलगाड़ी दोनों दिशाओं में बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत कल से नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ परिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है। 3 दिवसीय बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें चीनी और जैव ईंधन क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारत जैव ईंधन और अन्य उप उत्पादों के उत्पादन में देश की नवीनतम तकनीक को अपनाने का प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अनाज आधारित डिस्टिलरी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के औद्योगिक दौरों के साथ कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर रहा है। भारत मंडपम में कल चीनी और जैव ईंधन उभरता परिदृश्य शीर्षक से एक कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। आईएसओ परिषद ने भारत को 2024 के लिए संगठन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आईएसओ के सदस्यों के रूप में लगभग 85 देश हैं, जो दुनिया में लगभग 90% चीनी उत्पादन करते हैं। इसका उद्देश्य चीनी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों से निपटने में आपसी समझ और प्रगतिशील दृष्टिकोण लाने के लिए प्रमुख चीनी उत्पादक उपभोक्ता और व्यापारिक देशों को एक साथ लाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत की। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव की मौजूदगी में ओआरएस घोल तथा जिंक की गोलियां बच्चों को वितरित करने का अभियान शुरू किया। यह अभियान 1 जुलाई से शुरू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य बचपन में डायरिया से बाल मृत्यु दर को शून्य पर लाना है। इसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को ओआरएस घोल और जिंक की गोलियां दी जाएंगी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज जनता की समस्या के निदान के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही निवारण के लिए विभागों को निर्देश दिए। फरीदाबाद के एडीसी डॉ आनंद शर्मा ने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 35 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें 12 शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर शिकायतकर्ता को राहत दी गई। वहीं 23 शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये सभी शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड, बिजली, पेयजल, पुलिस और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित थीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का दावा करने वाले एक संदेश को फर्जी करार दिया है। मंत्रालय ने कहा, ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में आज हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहते हुए 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहते हुए 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 25 से 35 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली के 7 लोकसभा सांसदों ने आज संसद भवन में अपनी सदस्यता की शपथ ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई भागों में जल संकट अभी भी बरकरार है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को स्थगित करते हुए मामले की सुनवाई को बुधवार तक टाल दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के एक सप्ताह एक थीम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।